लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह में यीशु के निष्ठा में प्रेम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम उनके संग विश्वासघात कर सकते हैं, किंतु वे हमारे संग सदैव विश्वासी बने रहते हैं। संत पापा लियो ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
Cari fratelli e sorelle, proseguiamo il nostro cammino alla scuola del Vangelo, seguendo i passi di Gesù negli ultimi giorni della sua vita.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम सुसमाचार रूपी विद्यालय पर अपनी यात्रा जारी रखते हुए यीशु के जीवन के अंतिम क्षणों का अनुसरण करें। आज मैं एक अंतरंग नाटकीय यद्यपि अत्यधिक सच्चाई के गहरे दृश्य का जिक्र करूंगा। अंतिम व्यारी की कोठरी, जहां यीशु इस बात को प्रकट करते हैं कि बारहों में से एक उन्हें धोखा देगा, तुम में से एक जो मेरे संग भोजन कर रहा है मुझे धोखा देगा। संत पापा ने कहा कि ये बहुत कठोर शब्द हैं। यीशु ऐसा कहते हुए उन्हें दोषी करार नहीं देते हैं, बल्कि यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रेम जब यह सच्चा है उस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। ऊपर अंतिम व्यारी की कोठरी, जहां थोड़े ही समय पहले सारी चीजें सतर्कता में तैयार की गई थीं, अचानक एक दर्द भरी शांति से भर जाती है। यह उनमें सवाल, संदेह, संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। यह एक दर्द है जिसके बारे में हम सभी वाकिफ हैं। जब हमारे संग हमारा कोई अति करीबी धोखेबाजी करता है, इसके बावजूद यीशु जिस भांति उन बातों की चर्चा करते जो उनके ऊपर घटित होने को है, अपने में आश्चर्यजनक है। वे अपनी आवाज ऊंची नहीं करते हैं, न ही अपनी अंगुली उठाते हैं और न ही यूदस का नाम ही उच्चारित करते हैं। वे इस भांति कहते हैं कि यहाँ हर कोई अपने में एक सवाल पूछ सकता है, और यह वैसा ही होता है। वे बहुत उदास हो गए और एक एक उनसे पूछने लगे, तो वह नहीं हूँ। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा कि यह सवाल कहीं मैं तो नहीं हूँ, शायद हम भी पूर्ण ईमानदारी में अपने आप से पूछ सकते हैं। यह निर्दोष होने का सवाल नहीं है, बल्कि एक शिष्य के बारे में जो अपने में संवेदनशील है। यह आत्म ग्लानी में रोना नहीं है, लेकिन वह फुसफुसाहट है जो प्रेम करने की चाह रखता है, लेकिन इस बात से सचेत है कि इसके बदले वह हानि पहुंचाता है। यही वह सचेतना है जहां से हमारे लिए मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। संत पापा ने कहा कि यीशु अपमानित करते हुए निंदा नहीं करते हैं, वे सच्चाई को व्यक्त करते हैं क्योंकि वे बचाना चाहते हैं, और बचाए जाने के लिए हमें इसका अनुभव करना जरूरी है। इस बात को अनुभव करना कि कोई उसमें संलिप्त है, हमें यह अनुभव करना आवश्यक है। सारी बातों के बावजूद एक व्यक्ति को प्रेम किया जाता है, वह इसका अनुभव करे। हमें इस बात का अनुभव करने की जरूरत है कि बुराई सच है, लेकिन वह अपने में अंतिम शब्द नहीं है।
Solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo può accettare anche la ferita del tradimento.
केवल वे जिन्होंने एक सच्चे प्रेम का अनुभव किया है अपने में धोखे के घाव को भी स्वीकार कर सकते हैं। शिष्यों की प्रतिक्रिया अपने में क्रोध नहीं बल्कि उदासी है। वे अपने में क्रोध नहीं हैं, वे दुख का अनुभव करते हैं। संत पापा ने कहा, यह दुख है जिसकी उत्पत्ति संभावित रूप में शामिल होने के भाव से उत्पन्न होती है, और खास रूप से यह दुख यदि ईमानदारी पूर्वक स्वीकार किया जाए तो यह मन परिवर्तन का स्थल बनता है। सुसमाचार हमें बुराई को नकारने का पाठ नहीं पढ़ाता है, लेकिन उसे एक दुखदायी अवसर की भांति पहचानने को कहता है जो हमें नया जन्म देता है। इसके बाद यीशु एक वाक्य को जोड़ते हैं जो हमें विचलित करता और हमें सोचने को बाध्य करता है। धिक्कार उस मानव को जो मानव पुत्र के संग विश्वासघात करता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। निश्चित रूप में ये कठोर शब्द हैं, लेकिन हमें उसे अच्छी तरह समझने की जरूरत है। यह एक अभिशाप नहीं है बल्कि यह दुख की कराह है। यूनानी भाषा में धिक्कार एक शिकायत, ओह एक ईमानदारी पूर्ण ढंग से आश्चर्य और गहरी करुणा को व्यक्त करता है। संत पापा ने कहा कि हम अपने में टीका टिप्पणी करने के आदि हैं, लेकिन ईश्वर दुख को स्वीकार करते हैं। जब वे बुराई को देखते हैं तो वे बदला नहीं लेते हैं, लेकिन उन्हें दुख का अनुभव होता है, और उसके लिए अच्छा यही होता कि वह जन्म ना लिया होता। यह एक दोष देना नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे हम में से हर कोई भी पहचान सकता है। यदि हम प्रेम को नकारते हैं जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, हम धोखा देते तो हम स्वयं अपने संग विश्वासघात करते हैं। इस भांति हम इस दुनिया में अपने आने के अर्थ को खो देते हैं और अपने को मुक्ति से विमुख कर लेते हैं। संत पापा ने कहा, इसके बावजूद घोर अंधेरे में रहने पर भी हम ज्योति को बुझा नहीं पाते हैं। इसके विपरीत यह हमारे लिए चमकना शुरू होता है, क्योंकि यदि हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं, यदि हम अपने को यीशु ख्रिस्त के दुखों से स्पर्श होने देते हैं, तो हम अपने पुनर्जन्म को पाते हैं। विश्वास हमें पाप में गिरने की संभावना से नहीं बचाता है, लेकिन यह हमारे लिए सदैव एक मार्ग प्रशस्त करता है जो कि करुणा का मार्ग है। यीशु को हमारी कमजोरियों से शर्मिंदगी नहीं होती है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी दोस्ती विश्वासघात के जोखिम से मुक्त नहीं है, फिर भी वे भरोसा बनाए रखते हैं। वे अपने अनुयायियों के साथ मेज पर बैठना जारी रखते हैं। वे रोटी तोड़ना नहीं छोड़ते उनके लिए भी जो उन्हें धोखा देंगे। यह ईश्वर की मौन शक्ति है। वे प्रेम की मेज को कभी नहीं छोड़ते, तब भी नहीं जब उन्हें पता होता है कि वे अकेले रह जाएंगे।
Cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo chiederci oggi con sincerità.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि हम भी आज ईमानदारी पूर्वक अपने में पूछ सकते हैं, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ। दोषीदार महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिलों में सच्चाई के लिए एक जगह बनाने हेतु। मुक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, इस एहसास के साथ कि ये हम हैं जो ईश्वर पर अपना भरोसा तोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनका निर्माण भी कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसे नवीकृत भी कर सकते हैं। अंततः यह आशा है जहां हम इस बात को जानते हैं कि यद्यपि हम असफल होते हैं, लेकिन ईश्वर कभी असफल नहीं होते हैं। यदि हम उन्हें धोखा दें, फिर भी वे हमें प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते हैं, और यदि हम अपने को उनके प्रेम से विनम्रता घावों से स्पर्श होने देते हमेशा वफादार रहती, तो हमारा सचमुच में पुनर्जन्म हो सकता है और हम विश्वास घातियों की तरह नहीं बल्कि उन संतानों की तरह जीना शुरू कर सकते हैं जिन्हें हमेशा प्रेम किया गया है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dio onnipotente vi benedica, vi accompagni sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
सुने दिल में है प्रभु तू आके बस जाना, मेरे दिल को अपना मंदिर तू बना लेना, मुझको कर देना प्रभु तू एक नई रचना, बिनती सुन लेना, सुने दिल में है प्रभु तू आके बस जाना, मेरे दिल को अपना मंदिर तू बना लेना, मुझको कर देना प्रभु तू एक नई रचना, बिनती सुन लेना।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 17 अगस्त को ख्रिस्त त्याग अर्पित करने के बाद पोप लियो अल्बानो धर्म प्रांत के लगभग 100 गरीब लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे। समाज और अस्तित्व के हाशिए पर रहने वालों को स्वयं मेजबान द्वारा आगे आकर मेज पर सबसे अच्छी जगह लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रविवार 17 अगस्त को कस्तेल गंदोल्फो में ठीक यही होगा, जहां देवदूत प्रार्थना के बाद पोप लियो 14वें अल्बानो लत्सियाल धर्म प्रांत के कारितास अतिथियों के साथ बोर्गो लौदातो सी में दोपहर का भोजन करेंगे। सुसमाचार में वर्णित भोज के दृष्टांत में आए मेहमानों की तरह ये पुरुष और महिलाएं भी अपने लिए अच्छे कपड़े ढूंढ रहे हैं। हालांकि गिरजाघर छोटे होने के कारण अल्बानो स्थित संत मरिया देला रोतोंदो के तीर्थस्थल में सुबह 9:30 बजे पोप के पावन ख्रिस्त त्याग में कुछ ही लोग भाग ले पाएंगे। कारितास के निदेशक एलेसियो रोसी, जो अब इस भोज की तैयारी में जुटे हैं, बतलाते हैं, रविवार को पोप के साथ पोंटिफिकल विल्ला में भोजन करने वाले बेघर लोगों ने हमसे स्नान करने और इस अवसर पर पहनने के लिए साफ सुथरे अच्छे कपड़े मांगे हैं। वैटिकन न्यूज के डैनियल पिकेनी के साथ एक साक्षात्कार में निदेशक ने बतलाया कि यह भोज कैसे आयोजित हुआ और ये 100 पुरुष एवं महिलाएं कौन हैं जो पोप के साथ भोजन करेंगे। कारितास ने 2024 में 3,580 परिवारों सहित 49,500 लोगों की सहायता की है। 48,000 से ज्यादा लोगों को भोजन परोसा और 4,480 से ज्यादा नाश्ते बांटे। 2024 के पहले 10 महीनों में 13,000 लोगों को खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं दी गईं और कारितास चिकित्सा क्लिनिक ने 473 लोगों की देखभाल की। कई बेघर मेहमानों ने बतलाया कि वे पोप से बात करने के लिए उत्सुक हैं, जो उन्हें अपनी जिंदगी की कहानियां और कठिनाइयां साझा करना चाहते हैं। पोप लियो 14वें ने विश्व बाल दिवस समिति को लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग में जोड़ दिया। पोप ने बुधवार को एक आज्ञाप्ति जारी कर विश्व बाल दिवस समिति को लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ समिति में मिला दिया, जिसे पोप फ्रांसिस ने बच्चों के लिए समर्पित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु स्थापित किया था। विश्व बाल दिवस के लिए परम धर्म पीठ समिति, जो सीधे पोप के अधिकार क्षेत्र में थी, अब लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ समिति के अंतर्गत रखा गया है। इसकी स्थापना पिछले वर्ष पोप फ्रांसिस ने तथाकथित विश्व बाल दिवस के आयोजन और समन्वय के लिए की थी। यह निर्णय पोप लियो चौदहवें ने 6 अगस्त को राज्य सचिवालय के स्थानापन महाधर्माध्यक्ष एडगर पेना पारा से मुलाकात के बाद लिया और एक आदेश पत्र में इसे सार्वजनिक किया। इस दस्तावेज में जिसे आज जारी किया गया लेकिन इसकी तारीख शनिवार 9 अगस्त है, यह स्पष्ट किया गया है कि उस उच्च प्रावधान को संबंधित दोनों संस्थाओं को सूचित किया जाना है ताकि वे बदलाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। पोप फ्रांसिस ने 20 नवंबर 2024 को एक प्रलेख के माध्यम से विश्व बाल दिवस के लिए परमधम पीठ समिति की स्थापना की थी और इससे विश्व बाल दिवस के कलीसियाई उत्साह एवं प्रेरित संगठन की देखरेख का मिशन सौंपा था। विश्व युवा दिवस से प्रेरित इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के नाबालिगों को विश्वास, संगीत एवं साक्ष्यों के एक समूह के लिए एक साथ लाना है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि पूर्वोत्तर नाइजीरिया में 30 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश भर में कुल 3 करोड़ लोग खतरे में हैं। अधिकांश लोग किसान हैं जिन्हें इस क्षेत्र में जारी असुरक्षा के कारण अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और इस तरह वे अपनी जीविका के मुख्य स्रोत से कट गए हैं। मछुआरे भी प्रभावित हैं। वैटिकन की फिदेस न्यूज एजेंसी ने बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण चरवाहे अपने पशुओं के लिए चारा गाहों तक नहीं पहुंच रहे हैं और मछुआरे चाड झील एवं नाइजर तथा तराबा जैसे प्रमुख नदियों के पानी तक नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों समूह सशस्त्र संघर्षों और डाकों की गतिविधियों के कारण भी पीड़ित हैं जो उत्तरी नाइजीरिया में तबाही मचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने भी चिंता जताई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि इस कम उपज वाले मौसम यानी फसल कटाई से पहले के महीनों में 3 करोड़ से ज्यादा नाइजीरियाई लोगों को खाद्य असुरक्षा का खतरा हो सकता है और रेड क्रॉस ने चेतावनी दी है कि सिर्फ राहत प्रयास ही इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। उनका कहना है कि नाइजीरिया में खाद्य असुरक्षा एक गहरी अनसुलझी समस्या का लक्षण है, यानी सशस्त्र समूहों द्वारा लगातार की जा रही हिंसा। रेड क्रॉस का कहना है कि इस संकट को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने और बढ़ा दिया है जिसने पूरे देश में आंतरिक विस्थापन को बढ़ाया है। नाइजीरिया उत्तर पश्चिम में सूखे और पूर्व में बाढ़ का सामना कर रहा है। ये दोनों चरम स्थितियां देश के कृषि प्रधान क्षेत्रों को तबाह कर रही हैं। अमेरिका की विदेशी सहायता नीति में भारी कटौती के बावजूद कार्तिक सहायता संगठन मध्य पूर्व में जरूरतमंद समुदायों को मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। बेरूत से लगभग 6 मील उत्तर में संत अंतोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक स्टिकर लगा है जिस पर लिखा है USAID अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा कोर, जबकि यह नाम अब लागू नहीं होता। 20 जनवरी को अमेरिकी प्रशासन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें कई विभागों और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विभाग एजेंसी के माध्यम से सभी सरकारी विदेशी सहायता को शुरू में 3 महीने के लिए रोक दिया गया। इस आदेश के साथ एक बयान भी जारी किया गया था जिसमें संकेत दिया गया था कि विदेशी सहायता उद्योग और नौकरशाही अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है और कई मामलों में अमेरिकी मूल्यों के विपरीत हैं। हजारों मानवीय परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण अमेरिकी सरकारी फंडिंग में अचानक रोक ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और गैर लाभकारी एजेंसियों और उनके लाभार्थियों को स्तब्ध कर दिया। यह निर्णय संत अंतोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा। गुड शेफर्ड की थम बहनों द्वारा संचालित इस केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल इकाई से काम रोकने का आदेश मिला जो 2008 से इस स्वास्थ्य केंद्र को अमेरिकी सरकार से धन मुहैया करा रहा था। स्वास्थ्य केंद्र जो हर महीने 2000 लोगों की देखभाल करता है, इसके लिए इसके परिणाम तुरंत सामने आए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।